आप सुनना शुरू कर चुके हैं न्यूज 18 हिंदी का पॉडकास्ट। इस पॉडकास्ट में अनुराग अन्वेषी आपका स्वागत करता है। स्वीकार करें मेरा नमस्कार। साथियों, आज के पॉडकास्ट में बताएंगे देश भर में कोरोना संक्रमण का हाल, जो अब काबू में आता दिख रहा है। इसके अलावा दवा और ऑक्सीजन सिलेंडर की जमाखोरी के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट में क्या सुनवाई हुई, यह भी बताएंगे आपको। मध्य प्रदेश में 3,000 जूनियर डॉक्टरों ने दे दिया है इस्तीफा। इनके हड़ताल को लेकर जबलपुर हाईकोर्ट ने क्या कहा, यह भी लेकर आए हैं हम आज के पॉडकास्ट में। बाबा रामदेव के एक बयान से अब ज्योतिषाचार्यों को आपत्ति हो गई है। आज के पॉडकास्ट में आपको बताएंगे कि ऐसा क्या कह दिया बाबा रामदेव ने। मानसून की ठंडी फुहारों के साथ खत्म होगा आज का हमारा पॉडकास्ट, लेकिन उससे पहले आइए चलें पहली खबर की ओर। देश भर में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर अब थमती दिखाई पड़ रही है। हर दिन कोरोना संक्रमण के घटते केस राहत दे रहे हैं, लेकिन सच है कि खतरा अभी कम नहीं हुआ है। गुरुवार को जारी स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 1,33,953 नए मामले सामने आए हैं, जबकि इस दौरान 2,11,750 संक्रमित ठीक हो गए। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि बीते 24 घंटे में 2,898 मरीजों की मौत हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़े बताते हैं कि 5 राज्यों में स्थिति अब भी गंभीर है। इन राज्यों में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या अभी भी 1,00,000 से ज़्यादा है। कर्नाटक में अभी 2,93,000 एक्टिव केस हैं, जबकि तमिलनाडु में 2,88,000, महाराष्ट्र में 2,04,000, केरल में 1,92,000 और आंध्र प्रदेश में 1,43,000 एक्टिव केस हैं। दवा और ऑक्सीजन सिलेंडर की जमाखोरी के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने सख्त रवैया अपनाया है। वहीं ड्रग कंट्रोलर ने इस मामले में गौतम गंभीर फाउंडेशन को दोषी माना है। ड्रग कंट्रोलर की तरफ से कोर्ट को बताया गया कि फेविप्लू के 2,349 स्ट्रिप्स गौतम गंभीर फाउंडेशन ने खरीदे। मामले की सुनवाई के दौरान ड्रग कंट्रोलर ने हाईकोर्ट में यह भी बताया कि इस मामले में गौतम गंभीर फाउंडेशन को नोटिस जारी कर यह पूछा गया है कि दवाएं उन्होंने कहां से खरीदी और क्या इसके लिए उन्होंने लाइसेंस अथॉरिटी से इजाज़त ली थी। ड्रग कंट्रोल विभाग की ओर से वकील नंदिता राव ने कहा कि गंभीर फाउंडेशन ने 120 ऑक्सीजन सिलेंडर खरीदे और अधिकृत डीलरों द्वारा फिर से भरे गए और डॉक्टर सिद्धार्थ की देखरेख में विभिन्न लोगों को वितरित किए गए। गौतम गंभीर फाउंडेशन ने 1,139 मरीजों को मुफ्त दवाएं दी। गौतम गंभीर फाउंडेशन ने ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट के तहत अपराध करते हुए फेविफ्लू की अनधिकृत तरीके से स्टॉकिंग भी की। गौतम गंभीर फाउंडेशन ने दवाएं स्टोर करके ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट का उल्लंघन किया है। महाराष्ट्र के बदलापुर MIDC इलाके में एक फैक्ट्री से गैस का रिसाव होने के चलते स्थानीय लोगों को सांस लेने में परेशानी होने लगी। कुछ लोगों को उल्टी और मिचली आने की शिकायत भी हुई। सूचना मिलते ही दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंची और इलाके का मुआयना किया। यह गैस रिसाव MIDC क्षेत्र में नोबल इंटरमीडिया प्राइवेट लिमिटेड से हुआ। यह कंपनी एक रिएक्टर में कच्चे तेल के लिए सल्फ्यूरिक एसिड और बेंजीन डिहाइड्रेट को मिलाती है। आवश्यक तापमान नियंत्रित करने में हुई चूक के कारण रिएक्टर से रिसाव हो गया। हालांकि यह गैस जहरीली नहीं है, लेकिन इसके रिसाव से सांस की परेशानी होती है। इससे शरीर की त्वचा और आंखों को भी नुकसान पहुंच सकता है। बदलापुर दमकल अधिकारी भागवत सोनोन के मुताबिक लोगों को पुलिस और फायर ब्रिगेड ने जब यह बताया कि यह गैस जहरीली नहीं है, तब जाकर लोगों के भीतर का भय कम हुआ। बताया गया कि करीब 3 किलोमीटर के दायरे में इस गैस के रिसाव का असर रहा। इस दौरान कई लोगों की तबीयत भी बिगड़ी। ठाणे नगर निगम ने अपने बयान में कहा कि बदलापुर में गुरुवार रात करीब 10:22 पर गैस रिसाव की सूचना मिली। क्षेत्र के लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। रात 11:24 पर फायर ब्रिगेड ने रिसाव रोकने में कामयाबी पा ली। स्थिति नियंत्रण में है और कोई घायल नहीं है। मध्य प्रदेश के करीब 3,000 जूनियर डॉक्टरों ने अपनी मांगों को लेकर गुरुवार को सामूहिक इस्तीफा दे दिया है। भोपाल के जूनियर डॉक्टर्स एसोसिएशन का दावा है कि मेडिकल से जुड़े दूसरे संघ भी उनका समर्थन कर रहे हैं। वे अपना आंदोलन जारी रखेंगे। आपको बता दें कि जबलपुर हाईकोर्ट ने गुरुवार को ही जूनियर डॉक्टरों को 24 घंटे के अंदर हड़ताल खत्म करने और काम पर वापस लौटने का आदेश दिया था। साथ ही कहा था कि अगर डॉक्टरों ने हड़ताल नहीं खत्म की तो सरकार उन पर कड़ी कार्रवाई करे। हाईकोर्ट ने एक याचिका की सुनवाई के दौरान जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल की निंदा करते हुए इसे असंवैधानिक बताया और तत्काल हड़ताल वापस लेने का आदेश दिया है। हाईकोर्ट ने कहा कि कोरोना महामारी के दौरान जब डॉक्टरों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, ऐसे नाजुक हालात में जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल उचित नहीं ठहराई जा सकती। दरअसल राज्य सरकार की ओर से हाईकोर्ट में कहा गया कि जूनियर डॉक्टरों की अधिकतम मांगे सरकार ने मंजूर कर ली हैं, बावजूद डॉक्टर हड़ताल कर रहे हैं। ये खबरें आप न्यूज़ 18 हिंदी के पॉडकास्ट में सुन रहे हैं। इन्हें विस्तार से पढ़ने के लिए आप हमारी वेबसाइट hindi.news18.com पर जाएं। एलोपैथी को लेकर दिए योग गुरु बाबा रामदेव के बयान का तूफान अभी पूरी तरह से थमा भी नहीं था कि अब उनके एक बयान से ज्योतिषाचार्य आहत हो गए। दरअसल एक योग शिविर में रामदेव ने कहा कि काल, घड़ी और मुहूर्त के नाम पर ये लोगों को बहकाते हैं, क्योंकि सारे मुहूर्त भगवान ने बना रखे हैं, इन्हें कोई अनुमान नहीं है। रामदेव ने साफ कहा कि न तो ये लोग कोरोना महामारी के बारे में कोई भविष्यवाणी दे सके, न ही ब्लैक फंगस को लेकर, और न ही तब कोई पूर्वानुमान दे पाए जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी की थी। रामदेव की इस आलोचना को ज्योतिष के जानकारों ने अनर्गल बयानबाजी बताते हुए पलटवार किया कि योग और आयुर्वेद के नाम पर रामदेव ने खुद अरबों की इंडस्ट्री खड़ी कर ली है, उन्हें पहले अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। बहुप्रतीक्षित मानसून केरल के दक्षिणी हिस्से में दस्तक देने के बाद जून के अंत तक राजस्थान में पहुंच सकता है। राजस्थान में पिछले कुछ दिनों से विक्षोभ का असर देखने को मिल रहा है, इसके कारण मौसम में बदलाव का दौर जारी है। राजस्थान में पिछले 24 घंटे में राज्य के कुछ भागों में आंधी और बारिश दर्ज की गई है। इस दौरान सबसे ज़्यादा 60 मिलीमीटर बारिश पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर जिले के शेरगढ़ में दर्ज की गई है, जबकि पूर्वी राजस्थान के सीकर के रामगढ़ में 43 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। इनके अलावा प्रदेश के कई इलाकों में हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश हुई है। मौसम विभाग के अनुसार आज एक बार फिर पश्चिमी राजस्थान के बीकानेर, गंगानगर, चूरू, हनुमानगढ़, नागौर, जैसलमेर, बाड़मेर, जालौर, पाली और जोधपुर जिलों के कुछ भागों में तेज अंधड़ आने की संभावना है। इस अंधड़ की गति 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा रह सकती है। इसके साथ ही इन इलाकों में बारिश होने की भी प्रबल संभावना है। छत्तीसगढ़ में मानसून की एंट्री 10 जून तक हो सकती है। इससे पहले प्री मानसून में झमाझम बारिश की संभावना जताई गई है। इस बीच गुरुवार को मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में घंटे भर के लिए हुई तेज बारिश ने पूरे शहर की तस्वीर बदल कर रख दी। तेज हवा के साथ मूसलाधार बारिश से शहर के कई इलाकों में पेड़ गिर गए, BRTS कॉरिडोर तालाब में तब्दील हो गया, शहर में जलजमाव के हालात बन गए, पेड़ गिरने से कई जगहों पर सड़क पर खड़ी गाड़ियों को भारी नुकसान पहुंचा है। इंदौर के विजयनगर, रिगल चौराहा समेत रेसिडेंसी इलाके में कई जगह पेड़ गिरे हैं। इनके अलावा कई इलाकों में घंटों बिजली गुल रही। इंदौर में पिछले 2-3 दिनों से बादल छाए हुए हैं और पिछले 2 दिनों में रुक रुक कर बारिश भी हुई है। हालांकि गुरुवार को ही तेज प्री मानसून बारिश से लोगों को गर्मी से राहत तो मिली, लेकिन कई जगहों पर नुकसान भी हुआ है। हरियाणा में इस साल मानसून जून में दस्तक दे सकता है। मौसम विभाग के अनुसार परिस्थितियां अनुकूल बनी रहीं तो हरियाणा में मानसून समय या समय से पूर्व भी दस्तक दे सकता है। संभावना है कि हरियाणा में मानसून जून के आखिरी सप्ताह या जुलाई के पहले सप्ताह में पहुंचेगा। मौसम विभाग का कहना है कि केरल में बेशक 2 दिन देरी से मानसून पहुँचा है, लेकिन इसका मतलब यह कतई नहीं है कि हरियाणा में भी देरी से आएगा। ये खबरें आप न्यूज़ 18 हिंदी के पॉडकास्ट में सुन रहे थे। इन्हें विस्तार से पढ़ने के लिए आप हमारी वेबसाइट hindi.news18.com पर जाएं। न्यूज़ 18 हिंदी के पॉडकास्ट में आज इतना ही। नई खबरों और नए अपडेट के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अनुराग अन्वेषी को विदा दें। नमस्कार दोस्तों।